ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तो बड़े सवेरे उठ के चल दिए सती अनुसुईया अकेले पगडंडी से। कुछ ही दूर जानकी कुंड से जब आगे बढ़े, अरे 4-6 किलोमीटर के बाद घनघोर जंगल जहां कुलाड़ी कभी चली ही नहीं थी, चीता घरों के ऊपर चढ़ जावा करें। वो 4-6 किलोमीटर तक घर सर्थ है, फिर घर भी नहीं। चीता भालू शेर चलते चले गए, पगडंडियों में कपड़े फट जाए। आगे बढ़ते ही चले गए, दिन भर चले, शाम के समय में एक चरवाहा गाय लेके रास्ते पर आ गया। तो बोले, क्यों रे अनुसुईया कितनी दूर है? बोले, बस महाराज जुमक गए, पासे में है 1 वर्ष। 1 फरलांग है तो 1 वर्ष, 1 किलोमीटर है तो 1 वर्ष, और 10 किलोमीटर है तो 1 वर्ष। यही एक बार हमको बता दिया 1 कोस, वो था 21 किलोमीटर। मर गया, फिर जंगली में रहना पड़ा मानिकपुर से दारकुंडी। तो बोले, अच्छा या दिखाई पड़े थे ये पहाड़ के बीच में ही, पहाड़ के नीचे। उस समय वहां से 1 किलोमीटर करीब रहा, 1.5 किलोमीटर, जहां महाराज ने पूछा था। तो वो ठीक महाराज के, मैं मन में जानता हूं कि वहां कोई नहीं है, फिर भी मुंह से निकली तो गया, क्यों रे वहां कोई रहता तो नहीं है? बोले, हाँ महाराज, एक बाई जी रहते। महाराज के अध्यक्ष तेरी पाप गृह की भेष बना के आगे आगे चले थे। वो कहा था ने पंडित पाप गृह लगा है। तो महाराज मन में विचार कर रहे थे, साधु के लिए पाप गृह है संग दोष, वो भी माई दाई का संग दोष। ऐसी जगह में भगवान हमको भेज रहे हैं जहां आदमी ने आदमी की जात, घनघोर जंगल, तो संग दोष से तो सहज ही मुक्ति मिल गई। ये सोचते हुए जा रहे थे, पूछा, क्यों रे कोई रहता तो नहीं है? बोले, हाँ महाराज, एक बाई जी रहती है, 21 साल करीब उम्र है, और वहां कोठड़ियां बहुत है वहां पर, एक किसी कोठरी में किवाड़ी नहीं है, एक कोठरी में किवाड़ी है उसी में रहती है, दिन भर बंद रहती है, शाम को जब देखती है आदमी जो नहीं है जंगल में तब बाहर निकलती है, लोटे में पानी लेके, अगरबत्ती लेके 25-30 जो देवता है जंगल में उन पे पानी छिड़कते हुए, अगरबत्ती दिखाते हुए सब की पूजा कर डालती है, यही उसकी पूजा है। वो चरवाहा वहीं का रहने वाला था ना, तो उनका दृश्य देखा करे दूर से। जहां बाई जी का नाम सुना तो महाराज को अपशगुन होने लगा, बोले, है तो नियत खराब। वास्तव में 20-21 साल की बिटिया विधवा हो गई थी, वो भाग के आके जंगल में भजन कर रही थी। महाराज को अपशगुन, और भजन जाने ने बूझे, खाली पड़ी थी मन में, वो पानी छिड़कना, अगरबत्ती घुमाना, और कौन सा भजन करेगी? महाराज बोले यार है तो गड़बड़, अच्छा पहले उसी का दर्शन कर लेंगे। भाई जी, बहन जी, माता जी, जगदम्बा, भवानी कुछ कह लेंगे तो कुत्सित विचार होगा तो बात सल्ले में बदल जाए, बरात्री स्नेह में बदल जाए तो भाव बदल जाएगा। चलो पहले उसी को देख ले। गए जहां दरवाजा था, बोले माता जी हम बाबा हैं, दर्शन करना चाहते हैं। भाई जी दरवाजा खोलो। संत जी कई काशन बोले लेकिन खंड खट करे कि मैं हूं, उपस्थिति जतावे, दरवाजा न खोले। इतने में महाराज के अंदर भाव आया, मान लो पाप ग्रही लगा है तो मैं अपनी रक्षा करने वाला कौन होता हूं? रक्षा करने वाले तो भगवान स्वयं है, मैं अपनी रक्षा करने वाला कौन होता हूं? क्या तुम्हारे करने से रक्षा हो जाएगी? क्या वो तो तब होती जो भगवान स्वयं रक्षक के रूप में खड़े हो। मैं कौन सी भाई जी का दर्शन करने चला आया? तुरंत हट गए वहां से और थोड़ा दहने बाएं आगे पीछे हुए तो सीढ़िया दिखाई पड़ गई। पुणे 200 से ऊपर सीढ़िया थी पहाड़ चढ़ने की। चढ़ते ही चले गए, वहां एक तख्त रखा हुआ था 125 साल पुराना और चार खंभों पर एक बैठका था। ऊपर छत पड़ी थी, सड़े गले मकान तमाम गिरे हुए थे, किसी में भालू किसी में अजगर, ये उन्हीं का निवासी था। जहां वो तख्त था उसके ठीक सिर के ऊपर एक ताखे में छोटे से हनुमान जी रखे हुए थे। बस उस तख्त पे जाके बैठ गए। भाई जी ने सोचा यहां कोई नहीं है, जंगल खाली। तब अब लोटे में पानी लिया और कुशासन से पानी मूर्ति पे ऐसे छिड़के, फिर अगरबत्ती ऐसे घुमाती हुई, ये मूर्ति वो मूर्ति, तीर्थों मूर्तियां बहुत होती है, सब जगह छिड़कते छिड़कते सीढ़िया चढ़ गई। क्यों महाराज जहां बैठे थे उसके ऊपर भी तो एक मूर्ति थी, उसकी पूजा करने। जहां तख्त में बैठे महाराज को देखा तो कांप गई, डर गई, तो महाराज के सीने में धड़कन होने लगी, धड़धड़ धड़धड़। तो महाराज बोले हैं कोई डर रहा है क्या? धड़कन किस बात की? शेर आ गया कि भालू आ गया कि अजगर है, क्या है या कोई डर रहा है, बात क्या है? जहां आंख खोला तो सामने खड़ी थी इतनी नीचे जिसका दर्शन करने गए थे। तो बोले ओ यही भवानी वहां रहती है। और जब देखा कोई नहीं तो पूजा करने चली है। बोले अरे माता जी हम ही वो बाबा थे जो दर्शन करना चाहते थे, हम महात्मा हैं, आप निश्चिंत रहें, आप पूजा करें और जाएं, लेकिन आगे न बढ़े। तो महाराज ने सोचा कि बहुत ही बुरी तरह डर गई है। तब फिर महाराज उठे और थोड़ा इधर चले गए। जहां चार कदम इधर हटे महाराज तो दौड़ के आई, पानी और अगरबत्ती एक के साथ मूर्ति के ऊपर फेंका और फन 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 भागी। फिर 3 दिन महाराज वहां रहे, फिर लौट के पूजा करने नहीं आई वहां पर। महाराज बैठे रहे, दिया ने बत्ती ने टॉर्च ने माचिस कुछ नहीं। तो महाराज दिगंबर रात को आवाज आई, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। महाराज बोले यार झूर कठवा बोलत है रे, सूखा काट का तख्ता बोलत है मनुष्य की भाषा, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। दो एक बार बोला, महाराज बैठे रहे कोई बात नहीं। दूसरे दिन ठीक 9 बजे आवाज आई, वही आवाज। बोले महाराज हम पतित हो गए हैं, ये हमारी जगह है, आप नीचे जाइए। तब महाराज ने सोचा कोई बहुत अच्छे महात्मा थे, लगता है थोड़ा सा चूक गए, या आश्रम उनका है। तीसरे दिन वही रात को फिर आवाज आई, आपकी जगह नीचे है। बोले पतित होने के बाद भी ये इतना जानता है कि हमारी भी जगह नीचे है, तो हम क्यों ने अपनी जगह जाएं? तो पतित जगह पर रहने से भजन भी नहीं होगा, पतित जगह रहने से फायदा क्या? उस जगह में रहना चाहिए जो जगह स्वच्छ हो, जहाँ का वायुमंडल शुद्ध हो। पतित जगह पर रहने से भजन का ह्रास होता है, विकास नहीं। जब तुम पतित ही हो गए तो जगह रहने में फायदा क्या? वो तो बेचारा ये भी जानता कि हमारी जगह नीचे है, पतित होने के बाद भी जानता कि हमारी भी जगह नीचे, इसका मतलब ये त्रिकालज्ञ महात्मा है। उठे महाराज, आस्ते आस्ते चलते हुए नीचे चले आए गंगा किनारे। वहां कोठड़ियां थी लाइन से सात, उसके बाद में एक ब्रह्मशिला, एक ही आगे एक चबूतरा, उस पे बैठे। तब आदेश हुआ कि थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ जाओ, तो सीढ़िया के किनारे चबूतरे पर बैठ गए। तो तीसरे दिन आदेश हुआ थोड़ा सा उत्तर की ओर बढ़ जाओ, एक एक कदम बढ़ते हुए जब चबूतरे के बीच में आए, तब आदेश हुआ कि बैठ जाओ। बैठ गए, बोले जन्म भर यहीं रहना है, तुम्हारी जगह यही है, बस बैठ गए। तीन कोठड़ी इधर। अब बैठ तो गए और रोज एक दो तीन, अधिक से अधिक 30 फीट की दूरी पर अंतिम कोठड़ी में खून से लथपथ, बदल बदल के रोज हड्डियां, नया नया चमड़े के टुकड़े, कभी खून घसीटा हुआ। महाराज 10 बजे करीब घूमे तो देखे बदल बदल की हड्डियां कौन फेंक जाता है। 5-7 दिन तक ये क्रम चला। एक दिन ध्यान उदरी दिया तो बड़का शेर गुलबाग, धारीदार शेर होता है ना, उससे थोड़ा हल्का होता, उसी का भाई है, उन परस्पर उनका संबंध भी है। वो भीतर जा रहा था, बाहर आ रहा था, महाराज को देख रहा था, और दूरी केवल इतनी, जैसे लोग बैठे इस किनारे पर छलांग मारे तो सीधा महाराज के ऊपर आवे। तो बोले अरे बेटा तुम भी यहाँ रहता है, अब भगवान हमके यहाँ भेजे हैं रहने के लिए, तो तू अपनी जगह बदल ले, जन्म भर रहो ठाट से रहो, जैसे मनुष्य से बातें करें। दूसरे दिन एक कोल भील आया, दिखाई पड़ा। बोले क्यों रे, इस कोठरी में झाड़ू नहीं लगा देगा? बोले हो महाराज, पत्तियां सतियां समेट के डालियां तोड़ के झाड़ू बनाया, और उसमें झाड़ू लगा के हड्डी और गुड्डी जो कुछ था बाहर फेंक दिया, और तुम्बड़ी लिए रहते हैं वो लोग, उसमें पानी भर के लाया, सींच दिया। उस दिन से शेर उस कोठरी में कभी नहीं गया। फिर वो इधर चढ़ ब्रह्मशिला पर बैठा रहे, छत के ऊपर बैठा रहे, महाराज के ऊपर से पांव लटका के देखा करे, सामने नदी किनारे लेटा रहे, लेकिन कोठड़ी में नहीं गया। 15 साल जिया तो वैसे ही रहे। कभी कभी लोग आवे तो देख ले, बोले महाराज शेर शेर, बोले हमार पहरेदार है रे, तू चिंता न कर। आश्रम के सामने एक कुआ था गोल चबूतरा, फिर कुआ, चबूतरा पर तो महाराज बैठे ही थे, कुएं के नीचे बालू, बालू के नीचे गंगा, बालू में आके लेटा रहे रोज नियमित, 9-10 बजे आवे लेट जाए, 4-5 बजे उठ के स्पीड पकड़ लिया तो एक छलांग में गंगा कूद जाए और चिक पिक सुनाई पड़े कि बोले अच्छा अच्छा भोजन की जगह पहुंच गया। बहुत मिर्गे रहे जंगल में, जहां पहुंचे शेर तो जंगल में तहलका मच जाए। बांदर बोलने लगे काऊ काऊ, मोर बोलने लगे काऊ काऊ, मृगा बोलने लगे पिक पिक, पूरा जंगल में हलचल मच जाए। और वो छिप छिप जाए, एक आध को पकड़ी ले, बड़ा मस्त रहे शिकार करने का इनका तरीका। छिप छिप जाएगा मृगों के बीच में, प्रकट हो जाएगा, एक आध की गर्दन पकड़ लेगा। जहां चबूतरे पे दिन में एक आध बार घूमे उसी 40 फीट में सर्प पर पांव पड़ गया, सर्प ने पांव लपेट लिया, जहां झटका पांव रोए फूट गए, झटका तो गिरा धड़ाम, सीधा होके शांति से चल दिया, सर्प पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, काला भुजंग एकदम काला वाला सर्प शांति से बढ़ गया आगे उसी चाल से, क्योंकि उन सर्पों ने कभी मनुष्य तो देखा नहीं था, वो भी निर्भीक रहे। ऊपर अजगर लंबे लंबे मोटे मोटे, रात्रि में शेर सामने से निकल जाया करे, कभी कभी बोले तो पूरा पहाड़ झननन झननन किया करे। जंगली शेर की आवाज बहुत बुलंद होती है, ये पिंजड़े वाले शेरों में उसमें जमीन आसमान का फर्क होता, बहुत बुलंद आवाज होती है, मरियल आवाज नहीं होती। हाँ, जहां दर दहाड़ा तो पहाड़ झनझन झनझन करने लगते हैं। इस पहाड़ से भी आवाज आएगी, उससे भी आएगी, यदि पास पास में है तो। नदी का पानी पीने को एक खप्पर महाराज के पास बस बस बैठे रहे चुपचाप भजन करे। उठवा बरबर डाकों का अड्डा था, इसीलिए वहां कोई महात्मा टिका ही नहीं, 40 बरस से पहले रहते थे डाकू, पीछे रहते थे ऊपर कहीं छिपके, भटकते हुए डाकू भी पहुंच गए। एक आगे बढ़ के बोला रे एंट्री एक बाबा बैठे, तो सरदार बोला चुचुरा पकड़ के नदिया में फिटक दे। चुचुरा माने पखौड़ा, पकड़ के नदी में फेंक दे। तो जो आगे था वो बोला बाबा नीक है। बोले नीक नागा का करी, जब बाबा है तो कोई न कोई इसके पास आएगा तो हम लोगों के अड्डे की पोल खुलेगी, फेंक दे। बोले अबे तो ठीक है, अच्छे हैं, जब उपद्रव करी तो फेंक दे। आपस में गुपचुप बातें किया और डाकू गिरोह का गिरोह था और चुपचाप लौट गए। महाराज बोले नहीं, चुपचाप बैठे ही रह गए। उसी दिन जब पेशाब करने उठ के गए तो खून जैसा दिखाई पड़ा, अत्यधिक गर्मी की वजह से। तो महाराज सोचे कि खून गिरने लगा है और शरीर में क्या रखा है, 4 दिन में शरीर छूट जाएगी। महाराज के भूख प्यास की हमें कोई परवाह नहीं, रहने भूख लगे हमें वो तो ठीक था, लेकिन खुनवा देख के थोड़ी करुणा आ गई। भगवान को 2-4 जदबद कह दिया, ईश्वर देव बने बैठे हो, घोर जंगल में ला के पटक दियो, ने खाए का ने पिए का, पूर्विया रहे ना, बिहारी रहे, वो भी तो गोरखपुर देवरिया एक की है, जब शरीर ने रही तो भजन के करी। अब खून गिरना शुरू हुआ है, चार छह दिन में शरीर छूट जाए और का हुई। उस दिन भगवान ने फिर कहा, ठीक है जब खहे का है तो कल से खाओ। भगवानों हर भाषा जानते हैं, बिहारी भाषा में बोले जब खाए पे उतारू हो तो कल से खाओ। महाराज सोचे जंगल में मैं खाऊंगा क्या, यहाँ है क्या जो खाएंगे। और फिर भगवान ने ये रूखा वचन क्यों कहा कि खाए का है तो कल से खाओ। आखिर भगवान हमसे चाहते क्या थे। जब ये विचार आया तो भगवान ने बताया, यदि तुम 21 दिन न खाते तो जन्म भर खाना नहीं पड़ता, जस के तस यहां बैठे रहते, हवा भर भी चेहरा न मटकत, चेहरे पर किसी प्रकार की गलानी सिकन न आती। जब ये बात बताए महाराज तो एकदम बाल पकड़ के नोचने लगे, बाल उखाड़ के फेंक दे। बोले क्या बताएं, 14 दिन तो बीती गए, 7 दिन बाकी थे, वो भी बीत जाते। भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, खुनवा देख के करुणा आ गई हो, बाकी भूख प्यास का तो कोई हमें भान ही नहीं था। वो दिन बीत जाते, भगवान भी इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं, अरे कह देते बेटा 7 दिन और धीरज धर तो भगवान का बिगड़ जाता। फिर बहुत अन्यथा बेटा यहाँ पहरा लगा रहता, जल्दी तुम मोर दर्शन नहीं पाते हो, यहाँ पर बढ़िया विधिवत बताया करे। उस दिन को 12 बजे पदचाप सुनाई पड़ा कि कोई व्यक्ति आया और सीढ़िया चढ़ गया। फिर पदचाप सुनाई पड़ा कि वापस लौटा और चला भी गया। महाराज कितनी भी भूख हो कुछ भी हो, आप व्यक्ति से नहीं आशा करते थे, मांग भी नहीं सकते थे, वो भगवान भरोसे थे। फिर शाम को 4 बजे जब टहलने का समय आया चबूतरे पर, टहलते टहलते चबूतरे के किनारे आए तो सीढ़िया पर आधा मण चना रखा हुआ था खुला। चना पर जहां दृष्टि पड़ी तब भगवान ने कहा, आज तुमको यही खाना है। तो कच्चा चना कोई कहां तक चबाएगा, एक मुट्ठी चबा के पानी पी लिया और खप्पर राव आधा किलो वाला उसमें भर लिया जो आया। जहां महाराज अपना हिस्सा ले लिए, पेड़ों पर बांदर पहले ही थे, पता नहीं उनकी आंखें फूट गई क्या हुआ, 4-6 घंटे से चना वहीं पड़े थे, उन्हें दिखाई ये नहीं पड़ा, पहले नहीं दिखाई पड़ा। जो महाराज ले लिए सब कूद पड़े, टपाटप टपाटप 4-6 दाना उठा खा गए। महाराज के हो यहाँ बानर हो रहा, हम जब तक नहीं उठा लिए तब ससुरन के दिखाई नहीं पड़ा, फिर सब उठा लिए। उस दिन से अयाचित व्यवस्था होने लगी भगवान की तरफ से, आस्ते आस्ते व्यवस्था होने लगी। और महाराज जब रुक गए, वो जो डाकू देख के चले गए थे ना, अभी भीड़ भाड़ कुछ नहीं शुरुआत में, 1 महीना बाद उनमें से 2 डाकू आए। शाम के समय में 2 डाकू दिखाई पड़े, एक तो सरदार और एक उसका असिस्टेंट, एक मिश्रा रहा सरदार और पांडे रहा असिस्टेंट, निकल गए घोर जंगल की ओर निकल गए। वो गए खाली हाथ, बड़े सवेरे लौटे काफी गठड़ी पटड़ी थी माल पानी से लेस, गठड़ी वठड़ी रख के सरदार तो दत्वन करने लगा और जो असिस्टेंट था उपाड़े वो शरबत घोलने लगा चीनी का। तो ये जो पाड़े था इस शरबत घोलने वाला असिस्टेंट, ये महात्माओं में घुसपैठ थी, उसकी आया जाया करता था, इसकी कुछ न कुछ श्रद्धा रही है। ये बोला करे राम सिया बाबा बैठे हूं कि पियाई दे, तोर मन हो तो पियाई दे, तो वही बैठे बैठे कह करे बाबा चीनी आए घोरी पी है आओ ले ले, करे बाबा शरबत पी ले। महाराज बोले वह नहीं किया, बोले करे बाबा पी ले, कहे तो ही सनिश्चर घेरे है आओ पी ले। अब डाकुओं की भाषा, दो बार तीन बार कहा तो महाराज बोले हम चोरी का धन नहीं खाते। तो दत्वन फेंक के लाठी उठाया मार वाली में लोहा बंधा रहता है और दौड़ा, बोले तोरी बाबा की ऐसी की तैसी, हम कह रहे हैं कि तबे मार के फेंक दे, उपद्रव किया ना। कहते हैं चोरी का धन, सब रजाई ओढ़ के जाड़े के महीने में घरों में शयन कर रहे हैं, हम घोर जंगल शेर चीतों भालुओं से भरा हुआ, अजगर और सर्पों से भरा हुआ झाड़ियों का इस पार उस पार कर रहे हैं, ये खरी कमाई का है कि चोरी का, तोरी बाबा की ऐसी की तैसी। और लगाया दौड़ सपाट, अभी मार के गिरा देंगे और नदी हम डूबा के चल देंगे। वो दौड़ा उधर से ये गिलास और लोटा फेंक के और उसको कमर से पकड़ लिया। अब गुत्थम गुत्थ गुत्थम गुत्थ पे आधा घंटा लड़े, बोले मार के फेंक ही नहीं दिया तो हम डाकू किस बात के। बोले अरे रुक जा, मार के फेंक दी है लेकिन हम लोग इतना माल लिए हैं, 5 किलो चांदी है, ये है वो है, और कोई न कोई आता होगा, पोल खुल जाए तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा, पहले माल रफा दफा कर दें इधर उधर तो तब आएंगे मार डालेंगे, या फिर बाबा डर के मारे भागी जाए। फिर बाद में वो आधा घंटे में गठड़ी मोटड़ी उठाया, मुंह नहीं धोया, दांत पीसते हुए अट बट बोलते हुए दोनों चल दिए। अच्छा तो बाबा शाम के तुरे खबर लिए ममा के चले गए, उस दिन तो नहीं आए, लेकिन दूसरे दिन एक डाकू को और साथ में लिया, पहले थे दो हो गए तीन, अब तैयारी से आए केवल मार करने। बीच में एक झूरी नदी पड़ती है, उनके गांव 8 किलोमीटर पर था और आश्रम से 2 किलोमीटर पर एक नदी पड़ती है झूरी नदी, उस पर आए हाथ पांव धोया, जहां उससे थोड़ा ऊपर चढ़े आश्रम की ओर झाड़ियों से पगडंडी में आना था तो दो शेर आपस में लड़ गए। जंगल का कायदा होता है दो शेर एक साथ नहीं रहते, कदाचित भेंट होगी तो फिर एक जंगल का मालिक होता है दो नहीं, फिर फैसला होता है युद्ध से, झगड़ के लड़ गए बुरी तरह, आऊं कड़ी जमीन, उनके नाखूनों से इतना गर्दा उड़ा, वो डाकू जी पास में रह जाड़ी में अंधेर धूप, गर्दा उनके ऊपर गिरे, अब वो बुद्धि भ्रष्ट हो, बुद्धि खपतुलवास हो गई, उन्हें ये नहीं समझ में आवे कि शेर आगे लड़ रहे हैं कि दाहिने लड़ रहे हैं कि बाएं लड़ रहे हैं, भागे तो किसके किधर भागे, कहीं भाग के उनके मुंह में न चले जाएं। संज्ञा सुनने होके खड़े रहे तीनों, एक घंटा तक उनका युद्ध चला, फिर एक शेर आगे एक पीछे एक तरफ निकल गए। तो बगैर एक दूसरे से बोले लौट पड़े वापस नदी किनारे, वो नदिया किनारे आ गए, फिर वहां बैठ के थोड़ा सुस्त आए, फिर वो डाकू बोला, श्रद्धा बोले चलो चले। तो एक बोला भाई जिंदगी इसी जंगल में बीत गई, ऐसी दुर्घटना कभी नहीं घटी, इतनी भयंकर दुर्घटना कभी नहीं घटी, बाबा कुछ जानत है। डाकू जी बोले कि बाबा का जानत है, शेर है हमऊ है, भेंट हो गई और क्या हो गया, चलो चले। तो तीसरा बोला जोगनी अनुकूल नहीं है, शायद बहुत देखते हैं वो लोग। फिर बोले अरे चलो। तो फिर वो बोला साथी बोले हमारी हिम्मत नहीं है। दो वापस लाठी उठाया चल दी। तो अकेला डाकू जी क्या करें, और सबसे ज्यादा उस सरदारी पर प्रभाव पड़ा था। तब अकेला क्या करे, वो भी पीछे पीछे चला आया। घर आते ही चढ़ा बुखार, 60 उपवास, सन्नीपात। तब वो असिस्टेंट जो पाड़े से चीनी घोल रहा था ना, पहली बार महाराज को उसी ने देखा था, बोले बाबा बैठे, उसने कहा था चीनी भी वही घोल रहा था। जब साथी का 60 उपवास चल रहा था तब वही भाग के आया महाराज के पास, बोले प्रणाम किया। महाराज ने कहा कहा पाणे, साथी के कहा हाल है, बोले महाराज जाने पर भेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और सतयो कोनो महात्मा के, बोले हम लोग जंगली हैं महाराज, हमें कहा पता के महात्मा है के नहीं है। साथी बच जाता तो बड़ी कृपा होती, हम पता ही होता तो भला हम ये कामे क्यों करते। बोले अब तो न करिए, बोले कबो नहीं महाराज, सथिया बच जा तो बड़ी कृपा होती। बोले उठा विभूति भाग जल्दी। तो विभूति लिया अपने, खाया लगाया श्रद्धा से, उठाया विभूति बांधा अपने साफी के पल्ले में, देख जियत पाई जाई तो मरी ना, वो मर गया हुई तो हम क्या करें रे, इतने दिन कहां रहा, पहले क्यों नहीं आया। फिर भागा वहां से 8 किलोमीटर एक सांस में पहुंचा। डाकुओं का अभ्यास होता है जब रेस करना दौड़ना, पहुंचा जाके मुंह में डाला, पूरे शरीर में लगा दिया, बोले परमहंस बाबा भेजे अब मरिए ना। तो जहां महाराज का नाम सुना तो सन्निपात का रोगी बहुत बड़बड़ करता है, बोले वही मार डाली हूं, वही मार डाली हूं, खटिया से नीचे गिरा जाए तो सबने दबाया, बोले मार डालना पहले नीक तो हो जा। फिर दबा के रखा, बस उसी दिन से बुखार उतर गया। दूसरे दिन से जूस उस दिया और फिर बैलगाड़ी में लाद के और रास्ता बनाते हुए 500 आदमी गांव भर के उसको लेके आए आश्रम, महाराज का दर्शन कराया। बोले पहले मैं महाराज का दर्शन करी हूं जिन्होंने मुझे प्राणदान दिया, दर्शन कराया, वापस चले गए। डाका छूट गया, चोरी छूट गई, फिर वो डाकू जी साधु हो गए और गिरोह खत्म हो गया। फिर जितने गिरोह थे, वो बहुत गिरोह थे, सब ने दहने बाएं तो चोरी करे, लेकिन महाराज के रास्ते में दुरुद चारों तरफ, बोले परमहंस जी के रास्ते में बच के रहना रे, नहीं तो भागे ने बचियो मारे जाओगे। तो डर के मारे महाराज के चारों तरफ 5 किलोमीटर में कोई घटना नहीं घटी। 26 साल तक जब तक महाराज वहां निवास किया, महाराज जिस चबूतरे पर थे उसके ठीक आगे बीचों बीच गोल चबूतरा और था, उसके बीच में झाड़ झंकार था थोड़ा, वो था कुआ। महाराज को नहीं मालूम था कि कुआ है, तो 6 महीने बाद झाड़ी कटी तो वो कुआ निकला और भीतर एक लाश निकली। अरे बरबर डाकुओं के एरिया कोई फेंक दिया होगा किसी को, राग द्वेष से भरा हुआ, राग द्वेष तो होता ही है, या गिर गया होगा। फिर सफाई करवाई, फिर उसी का स्वच्छ पानी पीने लगे, फिर शांति से जब रहने लगे, कुछ भगत लोग आने जाने लगे, जब जंगल वालों को पता चला तो वो ऐसा जंगल है जहां 50 किलोमीटर सतना और 50-60-70 किलोमीटर बांदा और 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर करीब करवी, वहां एक वैद रहे और सतना से एक वैद आवे चंडी दिन उस क्षेत्र में, तो गरीबों को वैद कहां नसीब है। बड़े बड़े लोगों के वहां पूड़ी और अपने मन का भोजन किया करें और वैद्यों वाली दवाई वो किया करो, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, करवी में कोई डॉक्टर नहीं, बांदा में सतना में कहीं थे। पूरी जनता मर रही है मलेरिया का बुखार, तिजारी चौथिया अतरा, ये बुखार मलेरिया मच्छरों से जन्म लेने वाले बुखार बराबर चला करे। लोग आने लगे, महाराज कहें खो विभूति पटक मुड़ी कब से आवत है, बोले महाराज अतरा आवत है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है उसको अतरा, एक दिन का आतर देके आता है उसका नाम अतरा, तीसरे दिन आते हैं तिजारी, तीसरे दिन ज्वराना, चौथे दिन आता है चौथिया, किसी का रोजे आता वो मयादी, ऐसे कुछ बुखार थे। महाराज के उठा उठा विभूति पापी साला, पाप तुम करो भोगे बाबा जी, और कहे या तो जापड़ मार दे या खाली विभूति दो चार खरी खोटी कह दे। तब हर से बोले कब है पारी, बोले गुरु महाराज कल, कोई कहे परसों, पारी बीता क्या देख क्या होता है, पारी बीता क्या, बोले महाराज बुखार तो नहीं आया, बोले जो बेटा गया बुखार। अब लाइन लग गई पूरे जंगल से, हजारों केस हो गए, पागल आने लगे बेड़ियों से बांध के, नंगे होके नाचे, खोल बेड़ी हमरे पास बेड़ी नहीं छूटी तो कहां छूटी, तो भागे लगे, कभी महाराज की ओर झपटे कभी पिता की ओर झपटे, पटक मुड़ी पहले गंगा में नहला के ला सारे का, तो नहलावे खूब नहला, डुबा डुबा के नहला, जब कांपे लागे बोले मैं हाथ जोड़ो तू मैं ठीक हो गया हूं, बोले और डुबा सारे का गर्मी तो थी, और जब बाद में फिर ले आने खूब नवाए हैं, बोले हाँ कर प्रणाम, जहां प्रणाम कर दे एक छड़ी मार दे, बेड़ियां खोल दो ठीक। पता नहीं कैसे पगले आए पैदल गए, और एक महीना बाद ये तो लाइन लग गई, फिर इसके बदले में कुछ दिन बाद महाराज को भी बुखार आने लगा, शाम को एक घंटा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।